उसने शंकर का अपराध किया, बकरे का सर मिला, दोबारा 10 प्रचेताओं का पुत्र होकर जन्म हुआ और फिर तपस्या करके भगवान विष्णु का दर्शन किया। तो छठे अध्याय में, छठे स्कंध में उस दक्ष का भगवान के दर्शन से कैसे पोषण होता है, वापस बड़ा प्रजापति बना, फिर प्रजा की उत्पत्ति की, फिर उसका विवाह हुआ पांच जने से, मेरे ख्याल में पांच जने प्रजापति की बेटी से, और फिर उसमें से उसने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। नारद और पुत्रों को कहा बेटा तपस्या करने जाओ, बेटे तपस्या करने गए नारायण सरोवर, नारद जी ने उनको जाके उपदेश दिया और इतना भगवत रस पिलाया उन हरियाशव को कि वे वापस आए नहीं, साधु बन गए। नारद वापस लौट के आया, कहा दक्ष आपके बेटे तो साधु बन गए। दक्ष को बहुत क्रोध आया, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी के कहने के ऊपर 10,000 और बेटे हरियाशव और 10,000 बेटे पैदा किए छबला सब। ये भी गए तपस्या करने, नारद ने उसको साधु बना दिया। अब दक्ष को क्रोध आया, दक्ष ने नारद को तो कहा कि तुमने हमारे बच्चों को अभी तक राज भी नहीं करने दिया, साधु घर भी नहीं बसाने दिया, ऐसी साधु बना दिया, तुम लोग कैसे महात्मा हो, किसी के बच्चों को बिगाड़ देते हो। नारद कहता है घर बसाएगा, राज करेगा, फिर भगवान को प्राप्त करेगा, इसका मतलब फंस के फिर मुक्त होने आपका ये कहना है। अरे हम तो कहते हैं संसार बंधन का कारण है, इसका अर्थ ये है कि किसी को हम कहें कि 10 मंजिल इमारत से कोई नीचे गिरेगा तो हाथ पांव टूटेगा, तो क्या टूटने के बाद उसके बाद आप उसका इलाज कराओगे, हम तो कहें कूदो ही मत ना। लेकिन फिर भी दक्ष को बहुत क्रोध आया कि तेरे को शराब देता हूं नारद, तुम कहीं एक जगह 3 दिन भी नहीं टिक सकते हो। नारद बड़ा खुश हो गया, बड़ा जान छूट गई, अब एक जगह रहना नहीं, घर बनाना नहीं, मैं खुश हो गया नारद शराब से। लेकिन दक्ष बड़ा बुद्धिमान था, बोला अब बेटे नहीं पैदा करूंगा, अब बेटियां पैदा करता हूं, नारद अगर आएगा और बेटियों को ले जाएगा तो बड़ा बदनाम होगा ये साधु। आज दक्ष ने इतनी बुद्धिमानी की, अब तो 60 बेटियां पैदा हो गई। अब ये बेटियां जो पैदा हुई इससे फिर वंश चला आगे, इस बेटियों को कश्यप को दे दी, अन्य अन्य प्रजापतियों को इन बेटियों का विवाह करके दे दिया, और यहाँ दक्ष के ऊपर भगवान का अनुग्रह दर्शन से हुआ इसका वर्णन है। और फिर कथा आती है, इंद्र बैठा है अपने इंद्र आसन के ऊपर और आगे उसके सारे देवता गण बैठे हुए हैं। जब आदमी के पूजा प्रतिष्ठा करने वाले ज्यादा होते हैं ना, तब उसको अभिमान ज्यादा होता है और अभिमान में किसी का अपमान कर देता है। अब अंदर सामने से बृहस्पति गुरु जी आए, इंद्र ने उठ के सम्मान नहीं किया, गुरु तो बुद्धिमान था, वहीं से वापस लौट के चला गया, कुछ बोला नहीं। लेकिन गुरु के अपमान के कारण असुरों को पता लगा कि आज इंद्र ने गुरु का अपमान किया, अब उसकी शक्ति समाप्त हो गई, पहले हमने भी शुक्राचार्य का अपराध किया था, तब देवता हमारे ऊपर हावी हो गए थे, आज आक्रमण किया, आज इंद्र बहुत भयभीत हुआ, इंद्र चला गया ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा कि अब इंद्र और कोई रास्ता नहीं है, तुम एक काम करो, इस वक्त तुष्टा का बेटा विश्वरूप है, उसको अपना पुरोहित बनाओ। अब सारे देवता विश्वरूप के पास गए, उसके 3 सर थे, वो त्रिसरा था, जल पीने का सर था और स्वर्ण रोष पीने का सर था और पानी और भोजन करने का सर, देवता नहीं था, तुष्टा देवता था, उसका बेटा था, उसका नाना काल था और नाना असुरी कुल का था। आज विश्वरूप को जाके कहते हैं बेटा, इंद्र कहता है बेटा तुम हमारे पुरोहित बन जाओ। विश्वरूप कहते हैं पुरोहित बनना इतना उत्तम काम तो नहीं है, उत्तम काम तो साधु ब्राह्मण के लिए है खेत में गिरे हुए अन्न को इकट्ठा करके खाए, या मार्केट में लोग अपना अन्न लेके जाए कुछ बचा है वो खाए, उसको बोलते हैं उत्तम कोटि का साधु। और पुरोहित आपका गनू फिर आप दक्षिणा देंगे उससे मैं निर्वाह करूं, ये नीचे दर्जे का काम है, मैं करना चाहता नहीं हूं, लेकिन आप मेरे बड़े हैं, आप आज्ञा दे रहे हैं तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। विश्वरूप उनके साथ आया, विश्वरूप ने कहा मेरे पास नारायण कवच है, इंद्र मैं तेरे को नारायण कवच देता हूं, इस नारायण कवच को धारण करने के बाद तुम्हारे को कोई असुर कुछ मार नहीं सकता, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। फिर नारायण कवच के धारण करने की सारी विधि विश्वरूप ने शब्द के रूप में, ये शब्द के द्वारा कैसे भगवान पोषण कर रहा है नाद के द्वारा। नारायण कवच का उच्चारण करके विश्व रूप ने नारायण कवच प्रदान किया इंद्र को, और फिर एक दिन यज्ञ कर रहा है विश्वरूप। यज्ञ के अंदर एक आहुति दे देता है देवताओं को और एक आहुति दे देता है असुरों को। इंद्र बोलता है यजमा प्रहेत हमारा, सामग्री हमारी, और आहुति दे रहा है असुरों को। इंद्र को क्रोध आया, इंद्र ने विश्वरूप का गर्दन काट दिया, ब्राह्मण की हत्या हो गई, गुरु पुरोहित की हत्या हो गई। इंद्र को पाप लगा, इंद्र ने पाप को चार भाग में बांटा, एक भाग पृथ्वी को दिया, एक भाग जल को दिया, एक भाग पेड़ को दिया, एक भाग स्त्री को दिया, और उनको एक एक वरदान भी दिया। पृथ्वी को कहा तुम मेरा पाप का एक भाग धारण करोगी तो तेरा ऐसा कुछ बंजर रहेगा, रेगिस्तान रहेगा, वहां कोई शुद्ध कर्म नहीं होगा, लेकिन वरदान ये देता हूं कभी तो कोई खुदाई करेगा खोद तो सीधी तुम वापस सीधी हो जाओगी। जल को ये वरदान दिया कि दाल में दो जग डाल दोगे तो 5 के 50 खा के चले जाएंगे, दूध में डालोगे तो पानी भी 15 रुपए किलो में बिक जाएगा, लेकिन तुम्हारे को रखने से 2 दिन तुम अपवित्र हो जाओगे। बुध बुध होते हैं तो पवित्र इंद्र के ब्राह्मण हत्या का पाप जल में, इसको हम जब पढ़ते हैं तो कहते हैं पुराने जमाने में हमारे घरों में माताएं रोज धोके मटका पानी का भरती थी पीने का, आधा बचा हुआ था गिरा देती थी, धोने में कहीं डालती थी, पीती नहीं थी। अभी तो 15 दिन 25 दिन 50 दिन का पुराना बोतल का पानी हम इंद्र के पाप के सहित प्रेम से पीते हैं। दूसरे दिन का पानी मटके में भरा हुआ बूढ़े बुजुर्ग पहचानते थे कल वाला पानी क्यों दे रहे हो, कल वाला पानी मटके का पता लगता था, मटके का उसमें सा आ जाता था, दूसरे दिन तक पानी रहा तो इंद्र का पाप उसमें आ जाएगा। वृक्ष को कहा कि तुम्हारी कोई डाली काटेगा तो तुम्हारी डाली दोबारा आ जाएगी, लेकिन तुम्हारा रस जो टपकेगा वो अभक्ष्य हो जाएगा। स्त्री को मासिक धर्म पाप के कारण आएगा, लेकिन फिर भी उसकी भोग की वासना सदा बनी रहेगी। ऐसे विश्वरूप के पिता तुष्टा को क्रोध आया कि मेरे बेटे को मार दिया, ऐसा यज्ञ करूंगा इंद्र को समाप्त कर दूंगा। यज्ञ के मंत्र इंद्र का दुश्मन चाहिए, मंत्र जपने वाले ने गलती की, इंद्र जिसका दुश्मन हो। और यज्ञ के अंदर से एक व्यक्ति निकला बहुत बड़ा, लाल लाल बाल, लाल लाल आंखें, तांबे जैसा, और बाहर निकलते ही हाथ में त्रिशूल, और सब जगहें चारों दिशाएं 10 दिशाएं ढक गई। उसका नाम हो गया वृत्तासुर। वृत्तासुर जो सब जगह ढक दे, वृत्तासुर के प्रकट होते ही उसने सब असुरों को इकट्ठा किया और इंद्र के ऊपर आक्रमण करने के लिए हेती परहेती और माली सुमाली आदि सबको लेकर आया। अब इंद्र भयभीत होके भागा, नारायण कवच होते हुए भी। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो विष्णु के अलावा तुम्हारा और कोई सहायता करने वाला नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा अब तुम दधीचि के पास जाओ, दधीचि ऋषि की हड्डियां ले लो, लेकिन अश्वनी कुमार को साथ ले जाना, अश्वनी कुमार के कहने के ऊपर वो हड्डियां दे देगा। अब दधीचि के पास अश्वनी कुमार को लेकर इंद्र गया। दधीचि ऋषि को कहता है आपकी हड्डियां दे दीजिए। बोला मैं मरूंगा तब हड्डियां दूंगा, जिंदा तेरे को हड्डियां कैसे दे दूं, तुम मेरे को मारना चाहते हो। कहते आप परोपकारी हैं, साधु परोपकारी होते हैं, पराय परहित के लिए अपना शरीर दे सकते हैं। आज विश्वरूप आज दधीचि कहता है मरना तो एक दिन है ही, आज मेरी हड्डियों से मेरी हड्डियों से वज्र बनेगा, भगवान विष्णु ने कहा है, इसको भगवान की आज्ञा से आता है। और दधीचि ने अपने सारे शरीर के ऊपर दही और चीनी लगा दिया और गाय ने सब चाप दिया, बाकी बची हड्डी। और ये एक तीर्थ है, इसका नाम है मिश्रत तीर्थ, और ये तीर्थ है नैमिषारण्य के पास में 2 किलोमीटर। उस मिश्रत तीर्थ में दधीचि की मूर्ति गाय चाटती हुई, हड्डियां उसकी लेके वहां बनाया इंद्र ने। तब कहा कि तुमको पाप लगा है, सब तीर्थों में जाके स्नान करो, दधीचि का तुमने शरीर लिया, समापन शांत किया है, तो सारे तीर्थों का आवाहन किया, इसलिए उस तीर्थ का नाम है मिश्रण तीर्थ, सब तीर्थों का जल उसमें मिक्स है। तो यहां दधीचि की हड्डियां ली और विश्वकर्मा ने उसमें 100 दांतों वाला वज्र बनाया। आज वो वज्र लेके इंद्र के हाथ में वज्र, भगवान विष्णु की कृपा की शक्ति उसके अंदर, दधीचि के पास नारायण कवच था, न दधीचि के पास ये विद्या थी। उस दधीचि की हड्डियों का बना हुआ वज्र लेकर इंद्र का युद्ध होता है वृत्रासुर के साथ। इस युद्ध का बहुत अद्भुत वर्णन है। त्रेता युग में ये युद्ध हुआ था, कहीं भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध के अंदर वर्णन ये है कि एक समय के ऊपर इंद्र के हाथ में वज्र है और सामने वृत्रासुर खड़ा है, वृत्रासुर के हाथ में त्रिशूल है। वृत्रासुर ने आक्रमण करते हुए ऐसा धक्का दिया इंद्र का एरावत हाथी, 100 हाथ पीछे जाकर 100 धनुष पीछे गिरा, इंद्र नीचे गिरा, सारे देवता कांपने लगे। लेकिन हाथ में त्रिशूल लिए हुए वृत्रासुर कहता उठो, ऐसे गिरे उनके ऊपर आक्रमण नहीं करते हैं। इंद्र उठा, अमृत का हाथ घुमाया, हाथी ठीक हो गया। इंद्र को बोला तुम्हारे पास वज्र है, विष्णु की शक्ति इसमें है, नारायण कवच धारण किया हुआ है, लेकिन मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। तुम ब्राह्मण का हत्यारा हो, गुरु का हत्यारा हो, मेरे भाई का हत्यारा हो, अब देखो तेरे को मैं मारता हूं। तुम डरो इंद्र, तुम डरो मत। इंद्र के आक्रमण से भागने लगे असुरासुरों को बोलते शेर का अश्विन के पुत्र कहां भाग रहे हैं, युद्ध भूमि में पीठ दिखाना अच्छा नहीं है। अपने पिता के पुत्र हो तो छाती के ऊपर घाव खा के लड़ो, भागते क्यों हो, पिता के मल मूत्र हो क्या। फिर देवताओं को कहता है अरे भागने वालों के ऊपर आक्रमण कर रहे हो, लड़ना है तो मुझसे लड़ो। इंद्र को क्रोध आया, इंद्र ने एक हाथ पूरा काट दिया, एक हाथ कट गया वृत्रासुर का। वृत्रासुर क्रोध में भर के दोबारा इंद्र को नीचे गिराया, इंद्र के हाथ से वज्र गिर गया, वज्र गिर गया इंद्र के हाथ से, सब भयभीत हो गए। लेकिन फिर वृत्रासुर प्रार्थना करने गया उठो उठो इंद्र उठो, तुम मुझे मारो, मैं मरने को तैयार हूं, मैं मरूंगा तो भगवान को प्राप्त करूंगा और तुम राज करके यही सड़ते रहना। अब तो इंद्र भयभीत हुआ कि ये तो भगवान की भक्ति की बात करे, चतुर श्लोक की 4 श्लोकों में वृत्रासुर की बहुत बड़ी शिक्षा है। इंद्र भयभीत हुआ, इंद्र ने दूसरा हाथ काट दिया, दूसरा हाथ कटा, नीचे गिर के मुंह खोला वृत्रासुर ने और इंद्र को पेट में ले लिया। अब तो हाहाकार मच गई, इंद्र के हाथ में वज्र भी है, इंद्र को नारायण कवच पहना हुआ है, लेकिन वो वृत्रासुर के पेट में चला गया। अब तो वृत्रासुर अपने ध्यान में बैठ गया, इंद्र ने अपना वज्र चलाया, पेट को काट के बाहर आया और फिर गले के ऊपर 1 साल पूरा उसके वज्र ने घूमा, तब गला कटा। तब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद लिखते हैं वृत्रासुर को वज्र ने नहीं काटा, वो तो समाधि में पहले शरीर छोड़ चुका हुआ। मरे हुए वृत्रासुर के गले को वज्र से इंद्र ने काटा। इसके ऊपर मेरे को बात याद आती है, जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो एक बहुत डरपोक को किसी ने कहा तुम जाके युद्ध में भर्ती हो जाओ। वो डर रहा था, मैं कैसे जाऊं, तो नहीं तुमको जाना पड़ेगा, बोलते तो मेडिकल चेकअप होगी। मेडिकल चेकअप में डॉक्टर ने पूछा सामने दीवार पे क्या लिखा है, ABCD, बोला दीवार कहाँ है भाई, अंधे को कहाँ ले जाए दीवार के ऊपर, दीवार कहाँ है। फिर भी वो आदमी सुबह उठ के कहता है हमको रात में युद्ध भूमि में गया, सपने के अंदर मेरे हाथ में तलवार थी, तलवार क्या मेरे हाथ में थी, मैंने एक हाथ काटा उसका, दूसरा हाथ काटा उसका, फिर मैंने उसका पांव काटा। हमने पूछा भाई तुम हाथ पांव काट के टाइम क्यों खराब कर देती, गला क्यों नहीं काटा, बोला वो तो पहले ही कटा हुआ था, तो मरे हुए को मार रहा था, वो भी सपने में मार रहा था। तो वृत्रासुर के कटे हुए गर्दन को, और वृत्रासुर तो पहले ही समाधि में चला गया था, भगवान को तो भक्त। अब तो परीक्षित महाराज कहते ये वृत्रासुर था कौन, इतना बड़ा भक्त था कि इंद्र उसकी भक्ति के साथ भयभीत हो गया और इंद्र को वृत्रासुर के मृत्यु मारने का इतना अपराध लगा कि इंद्र के पीछे 6 रोग में काली कलूटी स्त्री पाप के रूप में पीछे जा जाए, इंद्र उसके पीछे जाए, इंद्र इंद्रासन छोड़ के मानसरोवर में पूर्व उत्तर दिशा के अंदर जहां लक्ष्मी विराजती है वहां छुपके जाके बैठा। भगवान लक्ष्मी ने उसका पाप से मुक्त किया। उस वक्त इंद्र का आसन खाली पड़ा था, चंद्रवंश का महाराज मुंह से इंद्र आसन के ऊपर जाके बैठा था और मुंह ने अपराध किया और इंद्र की पत्नी इंद्राणी उससे भोग का इच्छा किया, नूस को ऊपर से नीचे फेंक दिया गया। अब इंद्र पाप से मुक्त हुआ। लेकिन परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये वृत्रासुर बहुत बड़ा एक राजा था, इसका नाम था महाराज क्या, हरे कृष्ण, चित्रकेतु। चित्रकेतु नाम का बहुत बड़ा महान राजा था, सब सुख था, राजपाट था, लेकिन पुत्र नहीं था। एक दिन अंगिरा ऋषि आते हैं। अंगिरा ऋषि को आकर देखकर बड़ी सेवा की, महाराज एक कृपा कीजिए हमारे को पुत्र संतान हो। अंगिरा कहता है हम साधु किसी के घर में आते हैं तो भगवान का नाम देने आते हैं, तुम फिर संसार मांग रहे हो, तुम्हें पुत्र चाहिए तो ठीक है पुत्र मिलेगा लेकिन हर्ष और शोक दोनों तुमको देगा। वो हर्ष हो शोक हो लेकिन मेरे को पुत्र चाहिए। अंगिरा चला गया, पुत्र की प्राप्ति हुई चित्रकेतु को। जिस रानी से पुत्र हुआ राजा तो बड़ा प्रसन्न हुआ, दान पुण्य किया, आनंद मंगल हुआ, लेकिन छोटा बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ लगा, सब रानियों ने कहा अरे जिसने पुत्र को जन्म दिया है वो राजा की महारानी हमको पूछता नहीं है, क्या करना चाहिए। ईर्ष्या, इतना द्वेष हुआ कि उस बच्चे को विष दे दिया उन रानियों ने, बच्चे के प्राण निकल गए। महाराज चित्रगुप्त रोने लगा, अपने मुकुट को फेंक के हाहाकार करने लगा, बेटा कहाँ गया। इसी देर में अंगिरा नारद जी को लेके उतरे। अंगिरा ने कहा क्यों रो रहे हो, किसके लिए रो रहे हो, संसार में सदा रहने वाला कौन है, तुमसे पहले और कोई तुम्हारा पिता राजा था, तुमके बाहर और कोई रहेगा। तो पूछा आप कौन हो, रिभु हो, आप महात्मा कौन से यहां पधारे हो। तब अंगिरा के मैं वही अंगिरा हूं, ये नारद मेरे साथ आया है, मैंने ही आपको कहा था तेरे पुत्र होगा तो हर्ष करेगा, खुशी भी देगा और शोक वो एक दिन जाएगा तो दुख भी होगा। इतनी देर में नारद ने उसके पुत्र को आत्मा को मंगाया, पुत्र का शरीर में उठ के बैठ गया। अब तो चित्रकेतु कहता है मेरा बेटा वापस आ गया। वो बेटा उठ के कहता किसका बेटा, कौन बेटा, कई बार मैं तेरा बाप बना, इस संसार में कुछ सालों के लिए हमारा एक आधा संबंध होता है, जब ये शरीर छूटता है तब तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। लास्ट ईयर हमने एक बात इसके ऊपर बताई थी, हमारा चिंतन का अनुभव ये था कि संसार के अंदर हमारा रिश्ता ऐसा है जैसे ये 10 का नोट यहां पड़ा है, ये 10 का नोट यहां पड़ा है ना, ये 10 का नोट यहां इस वक्त पड़ा है किसका है? ये पंडित जी कहेगा मेरा है, पूजा में मेरे को मिला है। यहां जाके बाहर पंडित जी वो गाजर वाले को बोलेगा आधा किलो गाजर दो, तब 10 रुपया उसको देगा ना, तो गाजर वाला बोलेगा ये 10 रुपया मेरा है, यही कहेगा ना। और गाजर वाला वहां से जाके बाहर और लेगा मूंगफली वाले से मूंगफली, तो मूंगफली वाले को 10 रुपया देगा, मूंगफली वाले बोलेगा मेरा है। तो ये नोट जब से बना तब से 500 जेबों में घूमता है, जिसकी जेब में जाता है वो कहता है ये नोट मेरा है, ये नोट किसी का है क्या, ये नोट का भारत सरकार का, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, इस नोट के ऊपर क्या लिखा है देखा है, भारत सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है, हम सब इसको अपना मानते हैं लेकिन हमारा है नहीं, फटेगा तो वापस बैंक में जाएगा, ये सच है कि नहीं। ऐसे हम दुनिया में किसी को अपना बेटा भाई का काका नाना मामा मांग रहे हैं लेकिन ये 10 के नोट की तरह हमारी जेब में उस वक्त तक है जब तक हमारे साथ है, जब गया तब तो किसी और की जेब में चला जाएगा, लेकिन असल में न हमारा है न किसी और का, ये तो भगवान का अंश है। तो ये 10 के नोट से आपको समझ में इतनी बहुत सरलता से समझ में आ सकता है कि ये जेब बदलने वाला नोट किसी का भी नहीं है। आज अंगिरा और नारद ने कृपा करके कहा कि अब हम आपको संकृष्ण का मंत्र देते हैं, नीलांबर संकृष्ण बलराम जी अहंकार का देवता है, अहंकार का अधिपति है, थोड़ा सा अहंकार आदमी में होता है तो बलराम जी की पूजा करने से संकृष्ण की पूजा करने से अहंकार से मुक्ति होती है और अहंकार भगवान की भक्ति में सबसे बड़ी बाधा है। अहंकार बोला इस मंत्र में 7 दिन में आपको भगवान का दर्शन होगा और 7 दिन में साक्षात भगवान के दर्शन हुए और संकृष्ण नीलांबर नीले वस्त्र पहने हुए जब दर्शन दिया तब कहा कि आपको जो नारद ने और अंगिरा ने शिक्षा दी है वही शिक्षा सत्य है, आप उसी के ऊपर चलो। और फिर ये चित्रकेतु महाराज वहां से विद्याधर बना और विद्याधर बना तो बहुत विद्याधरों के साथ एक आकाश में चलने वाले विमान में चढ़ के कैलाश के ऊपर से जा रहा था। कैलाश में नीचे क्या देखता है, शंकर जी की गोद में पार्वती बैठी और ऋषि बैठे हुए हैं, 4 कुमार आदि। चित्रकेतु हंसा, अरे इतने सारे साधुओं के बीच में शंकर गोद में पार्वती को बैठ के बैठा हुआ है, लेकर बैठा है। पार्वती को क्रोध आया, पार्वती ने कहा शराप देती हूं तेरे को, तुम ही अभी शंकर को शिक्षा देने वाले आए हो, ये ऋषि बैठे हैं, ये ब्रह्मा आदि कभी भोले नहीं है, जाओ असुर बन जाओ। ऊपर से नीचे उतरा चित्रकेतु ने मां पार्वती को प्रणाम किया, शंकर जी तो केवल मुस्कुरा रहे थे, बोला मेरे को असुर बनने का कोई भय नहीं है। मैं केवल ये मानता हूं कि मैं मानता हूं कि मेरा भगवान की भक्ति नष्ट न हो। वो महाराज चित्रकेतु विद्याधर से आज वृत्तासुर बने थे, इसलिए संकर्षण की भक्ति उसके हृदय में पहले ही पड़ी थी। और शंकर तब पार्वती को कहते हैं, गौरी वो भी आपको शराप दे सकता था, लेकिन वो वैष्णव शराप नहीं दिया। शराप देने से क्षमा करना उत्तम है। यहां वृत्तासुर के का उधार, इंद्र की रक्षा भगवान ने पोषण किया। फिर दो अध्यायों में पूजा का वर्णन है। ये पूजा है कश्यप, उसकी दो पत्नियों के नाम मुख्य दिति और आदिति। कल भी हमने बताया था आपको, दिति के हिरणाकश और हिरणाकशिपु दो पुत्र। आज दिति कश्यप को खुश करने के लिए बहुत सेवा करके एक दिन प्रश्न करके कश्यप खुश हो गया, बोला मांगो क्या चाहिए। दिति कहती है, आप मेरे से प्रसन्न हुए हो ना, तो मेरे को ऐसा कोई रास्ता बताओ कि मेरे को बेटा चाहिए जो इंद्र को मारे। कश्यप ने कहा, राम, इंद्र भी मेरा ही बेटा है, आदिति का पुत्र, और ये मेरे मैं एक और बेटा पैदा करूं जो मेरे ही बेटे को मारे। मैं कहां इतने मुंह और काम में फंस गया कि स्त्री में बस में आ गया और वचन दे दिया। लेकिन वचन झूठा भी तो नहीं करना है, क्या करना चाहिए। बोला एक साल तक व्रत करो, एक साल का ये व्रत है, इस व्रत में सुबह शाम स्नान भी करना है, किसी को बुरा भला कहना नहीं है, खाने के बाद हाथ पांव धोने हैं। साल का व्रत पूरा होगा जब आपका पुंछम व्रत, तो फिर आपको ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी। एक साल का क्यों टाइम दे दिया। आदिति भी ऐसे कहेगी कश्यप को, मेरे को पुत्र, मेरे पुत्र दुखी है इंद्रादि, मेरा उद्धार करो। तब केवल सात दिन के व्रत की बात करेंगे। यहां एक साल क्यों बता दिया, इसलिए कि एक साल भगवान का भजन करेगा तो उसका मन बदल जाएगा, ये ऐसा काम नहीं करेगी, ये बुद्धिमानी है, ये सीख लो। बच्चे कभी जबरदस्ती जिद करेंगे हमको मोटरसाइकिल दे दो, आपको डर लगे कि ये गिरेगा एक्सीडेंट करेगा, तो उसको बोलना भगवत गीता के 700 श्लोक याद करो तो तेरे को कार लेके देंगे। 700 श्लोक उससे याद होंगे नहीं, आपकी जान छूट जाएगी, और याद करेगा तो फिर आपको जिद भी नहीं करेगा आपसे। ये कश्यप ने शिक्षा दी है। अब इंद्र को तो पता लगा कि मेरी मासी मेरे को मारने के लिए पूजा कर रही है, वो कौन सा नेता है जिसको पता नहीं लगेगा मेरे शत्रु की चाल क्या है। इंद्र वहां अपने आप को दूसरा रूप बदल के मासी की सेवा करे, लकड़ी लाए, कब पानी लाए, इंतजार किसका करे कि गलती कब करती है, गलती करेगी तब मैं देखूंगा। एक दिन शाम को थकी हारी खाने के बाद हाथ नहीं धोया, हाँ इंद्र ने कहा बहुत अच्छा गलती कर दी, आज फंस गई। खाने के बाद हाथ नहीं धोने से भी अपवित्र आदमी के अंदर भूत प्रेत घुस जाए मानो। इंद्र घुस गया गर्भ के अंदर दिति के, जो गर्भ में इंद्र का शत्रु पैदा हो रहा था, उसने वज्र लेके उसके सात टुकड़े किए। वो कह रहे मारो मत मारो मत मारो मत, सात के और सात किए, 49 हो गए। मारो मत मारो मत मारो मत नाम हो गया मारुत, 49 मारुत हो गए। अब इंद्र ने हाथ जोड़े मां को कहा, दिति मैं इंद्र हूं, ये आपका एक के बजाय 49 बेटे हो गए, 49 ये है, इनको मैं असुर नहीं, इनको मैं देवता बनाता हूं, और मैं 50वां आपके उदर में गया इसलिए आपका बेटा हूं, अब आप हमको क्षमा कर दो। अब दिति के 49 पुत्र ये असुर न बनकर देवता बने। तब परीक्षित कहता है, वज्र से कैसे नहीं मरा वो मारू, तो दिति का पुत्र वज्र से भी नहीं मरा। सुखदेव गोस्वामी मुस्कुरा के कहते हैं, परीक्षित ये आप क्यों पूछ रहे हो, आप ब्रह्मास्त्र से नहीं मरे थे जिसने आपकी रक्षा की, क्या वो उसकी वजह से रक्षा नहीं कर सकता क्या, तुम्हारी भी तो रक्षा हुई थी ना, तुम्हारे ऊपर भी तो ब्रह्मास्त्र का आक्रमण हुआ था, तब भी तो तुम्हारी रक्षा हो गई ना, जिसने तुम्हारी रक्षा की उसने वजह से उसकी रक्षा की। यहां छठा स्कंद पूरा होता है, सातवां स्कंद यहां से शुरू होता है, सातवें स्कंद में 15 अध्याय है। लेकिन प्रश्न पहले परीक्षित महाराज पूछता है, भगवान पक्षपात करते हैं, इंद्र की रक्षा कर दी, वृत्तासुर को मार दिया, तो भगवान क्या पक्षपात करते हैं क्या, ये प्रश्न है पहले। और इसका उत्तर देने के लिए नारद और युधिष्ठिर का संवाद बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। कैसा ही प्रश्न नारद से युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था, राजसूय यज्ञ के अंदर जब शिशुपाल का गर्दन कटने से उसकी आत्मा श्री कृष्ण में प्रवेश किया, तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे नारद देव ऋषि, ये पापी अपराधी द्वेषी कृष्ण को गालियां दे रहा था, इसको वो मुक्ति मिली है जो बहुत योगियों को नहीं मिलती है। तब उत्तर देते हुए नारद जी ने कहा था, भगवान पक्षपात किसी से नहीं करता है, भगवान का कोई शत्रु नहीं है, हरेक अपने अंतःकरण के अनुसार फल ग्रहण करते हैं। उत्तर में उदाहरण यह दिया कि बिजली तो एक है, यही बिजली इस माइक्रोफोन से मेरे शब्दों को आप तक पहुंचाने में बड़ा कर रही है, यही बिजली इस लाइट के अंदर जाती है तो आपको प्रकाश दे रही है, यही बिजली हीटर में जाएगी तो गर्मी देगी, यही बिजली पंखे में जाएगी तो हवा का विस्तार करेगी। तो क्या बिजली में विषमता है? बिजली तो एक ही है, लेकिन जो यंत्र है उसमें अंतर है, यंत्र में अंतर है। ये माइक्रोफोन है, वो ट्यूबलाइट है, और वो लाइट है, और वो कैमरा है, सब में बिजली है लेकिन सबका काम अलग हो गया। तो यंत्र में अंतर के कारण भेद होता है, बिजली में भेद नहीं है। पानी तो खेत में एक ही जाता है, आम के पेड़ से आम होता है और करेले की बेल में करेला होता है, तो पानी का कसूर तो नहीं है, बीज का कसूर है, जैसा बीज होगा वैसा फल होगा। ठीक ऐसे ही जिसका जैसा अंतःकरण वैसे उसको भगवान फल देते हैं, भगवान का कोई न शत्रु है न कोई भगवान का मित्र है। और फिर उदाहरण देते हैं, अरे उसी भगवान श्री कृष्ण को रंगमंच में देखते हुए कंस अपना शत्रु समझ रहा है, और मथुरावासी उसको सुकुमार बालक समझ रहे हैं, ब्रजवासी उसको अपना सखा समझ रहे हैं, नंद बाबा अपना पुत्र समझ रहा है, गोपियां काम के भाव से उससे प्रेम करती हैं, लेकिन भगवान सबको यथावत फल, ये यथा माम प्रपद्यन्ति तां सततेव भजामि अहम्। और ये कथा पूरी करके फिर नारद कहते हैं, ये शिशुपाल दंडवकर, ये हिरणाकश हिरणाकशिपु, ये रावण, ये कुंभकर्ण, ये असुर नहीं, ये वैकुंठ के दो द्वारपाल जय और विजय है, ये कोई साधारण असुर नहीं है, ये तो भगवान की लीला में भाग लेने के लिए नीचे आए थे। और तब 15 अध्यायों में सातवें स्कंद में ऊती कर्म वासना, ऊती अथवा कर्म वासना का वर्णन है। कर्म वासना का अर्थ क्या है, ऊती का अर्थ क्या है, ऊती का अर्थ है कपड़ा जैसे बुनते हैं ना, तीन धागे ऐसे कपड़ा ऐसे बुनते हैं ना, ऐसे हमारे कर्मों के तीन गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, किसका तीन इसे दूसरे गुण, ऐसे 84-84 लाख हमारे अलग अलग शरीर बनते हैं, इसको बोलते हैं मन वासना, कर्म वासना। तो 5 वासनाएं हैं असुरी, असुरी वासनाओं का 5 अध्यायों में हिरणाकश का वर्णन है, हिरणाकश असुरी वासना का प्रतीक है। 5 अध्यायों में देवी वासनाओं से प्रहलाद महाराज का चरित्र है, 5 वासनाओं में मानव के अंतर्गत युधिष्ठिर महाराज और नारद का संवाद है। तो अब आज का समय 7 के पास पहुंचता है, आगे कथा शुरू करें हिरणाकश की और प्रहलाद की या विराम दें? हरे कृष्ण, बोलिए, पूरा करें 7वां स्कंद, तैयार हैं आप? हरे कृष्ण। अब कथा ऐसे थोड़ा सा पीछे जाके देखिए कि हमने 3रे स्कंद में आपको बताया था कि दित्ति के 2 बेटे कश्यप से हुए, हिरणाकश और हिरणाकशिपु, इन दोनों को श्राप दिया 4 कुमारों ने, सनकादि कुमारों ने, 3 बार असुर बने, भगवान अनुग्रह करके उनके उद्धार के लिए आने का वचन भी दिया। संत कुमारों ने कहा, भगवान ही जब जाएंगे उनका अनुग्रह करेंगे तो हम भी जाएंगे, भगवान के उस अनुग्रह में हम भी इनकी सहायता करेंगे कि ये भगवान की भक्ति कर सके। और भी थोड़ी अंतरंग बात आपको बता दें, चलो आगे बताएंगे। अब ये भी हमने आपको बताया कि हिरणाकश जो था उसको वाराहदेव ने मार दिया जब वो पृथ्वी ला रहा था, ठीक है। आज हिरणाकश के मरने के ऊपर हिरणाकश की पत्नी दित्ति, हिरणाकश की मां और सारे बच्चे उसके रोने लगे कि हमारा पिता, हमारा पति, हमारा बेटा मारा गया, तब हिरण्यकश्यप बैठ के प्रवचन देने लगा। हिरण्यकश्यप प्रवचन देता है कि संसार में जो आता है उसको जाना पड़ता है, ये संसार सदा रहने वाला नहीं है। बड़े उदाहरण देके राजा के मरने का उदाहरण दिया, रानियों का उदाहरण दिया, दो पक्षियों का उदाहरण दिया कि मादा पक्षी को पकड़ लिया शिकारी ने, नर वो उसके लिए उसी वापस जाके उसी जाल में फंस गया। इस दुनिया में कोई रहेगा नहीं, सबको मरना पड़ेगा, ऐसा उपदेश देने लगा। उस उपदेश से वो तो संतुष्ट हो गए, लेकिन असुरी प्रवृत्ति ये है कि सबको बोला है कि सब मरने वाले हैं और स्वयं कहता है मैं अमर होना चाहता हूं। इसको बोलते हैं असुर। तपस्या भी कर सकता है, ज्ञान भी पूरा है, लेकिन भगवान से द्वेष करता है। ज्ञान ऐसा सुंदर है, कंस के पास भी ज्ञान था, हिरण्यकश्यप के पास भी ज्ञान है, जानता है कि शरीर समाप्त होगा, लेकिन भगवान के द्वेषी है। शंकर जी के बड़े भक्त हो सकते हैं रावण की तरह, लेकिन फिर भी राम से द्वेष करेंगे और उस सीता को उठा के चले जाएंगे। यह असुर की परिभाषा है। आज हिरण्यकश्यप अपनी माता को आश्वासन देकर मंदराचल की तलहटी में तपस्या करने गया कि मैं अब अमर बनने जा रहा हूं, और जब अमर बनने के लिए हिरण्यकश्यप वहां चला गया, तपस्या ऐसी की, अंगूठों के बल खड़ा होकर ऊपर तपस्या इतनी करने लगा कि आग जैसे आकाश में सब देवता परेशान होकर कहा कि इसका उद्धार कैसे होगा, ब्रह्मा जी ये तो नीचे बहुत बड़ी घोर तपस्या कर रहा है। कश्यप का पुत्र हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी वहां से ऊपर आए, देखा दिखाई नहीं दिया हिरण्यकश्यप, बांबी की मिट्टी की तरह कुछ दिखाई दिया, अंदर से आवाज आ रहा था, अरे यहां ये हिरण्यकश्यप, हे कश्यप, कश्यप के पुत्र मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, करमंडल में गंगा का जल छड़का, हड्डी बची थी केवल, मांस समाप्त चमड़ी समाप्त, केवल हड्डी के अंदर प्राण था, लेकिन हड्डी के अंदर भी इच्छाएं भरी हुई थी, इच्छाएं हड्डी में भी समाप्त नहीं हुई थी। कैसी इच्छाएं? सबके ऊपर राजा बनने की, सबका मालिक बनने की इच्छा तब भी नहीं गई थी। ब्रह्मा जी ने कहा वर मांग लो, मैं संतुष्ट हुआ। बोला वर ही देना है तो मेरे को अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं, 100 साल मेरे पूरे होंगे तो मेरे को भी सीट छोड़नी पड़ेगी, जब मैं अमर नहीं तो आपको कैसे अमर बना सकता हूं। अब एक हाथ एक माथा है हिरण्यकश्यप का, ब्रह्मा जी के चार माथे हैं, उसको चक्कर में डालता है, बोला आप अमर नहीं बना सकते तो मैं वो दिन में रात में नहीं मरूं, वरदान दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अच्छा आदमी से नहीं मरूं, पशु से नहीं मरूं, कोई बात नहीं तथास्तु, अंदर बाहर नहीं मरूं, जो भी डर था वो सब राक्षस से मरूं नहीं मरूं, असुर से नहीं मरूं, देवता से नहीं मरूं, तथास्तु। ब्रह्मा जी के चक्कर में डालने का प्रयास है। जब ब्रह्मा जी ने सब तथास्तु कहा तब कहा अब ये आप लिख के साइन करो कि आपने ये मेरे को वरदान दिया है, काम पक्का करते। अब ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, यहां से हिरण्यकश्यप वापस आया, वापस आते ही सबको कहा चलो आक्रमण करें, इंद्र के ऊपर आक्रमण किया, इंद्र भी अपने आसन से भागने लगा। अब तो चारों ओर से हिरण्यकश्यप कहता है चारों ओर से आप जाके जहां ब्राह्मण है, जहां यज्ञ हो रहा है, जहां गऊ है, उन सबका हट खत्म करो, कहां रहता है विष्णु, विष्णु के रहने की जगह कहां है, जहां कथा होती है वहां आता है ना, जहां यज्ञ होती है वहां होता है ना, जहां ब्राह्मण पाठ करते हैं वहां होता है ना, इन सबको मार दो, विष्णु कहां रहेगा। अब तो हिरण्यकश्यप ने इतना अत्याचार मचाया, इतना अत्याचार मचाया कि देव नारद कहता है कि मैं नारद इंद्र आदि देवता हिरण्यकश्यप के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होके मैं नारद है, हिरण्यकश्यप का गुण गाता था, भगवान का गुण भूल के उसके सामने मैं उसके सामने खड़े होके उसकी प्रशंसा करता था। इंद्र बरसात नहीं बरसाए, हिरण्यकश्यप अपनी तरफ से बरसात क्या, बगैर जोते खेत जमीन से फल मिले, आकाश में हाथ करके उतर कहो आम तो आम नीचे गिरे। हिरण्यकश्यप के भय से देवता सब चीजें देने लगे, लेकिन देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास गए कि इसने तो ये ब्रह्मा जी ने ऐसा वरदान दिया है, हम तो परेशान हो गए। भगवान विष्णु का मैं जानता तो हूं, लेकिन ये जब अपने बेटे के ऊपर अत्याचार करेगा तब इसको आप मरा हुआ समझो, आप अब निश्चित करके जाओ। तब दूसरे तरफ से कथा आती है, जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए चला गया था उस वक्त उसकी पत्नी कयाधु के गर्भ में बच्चा था। इंद्र आया कयाधु को उठा के ले जा रहा था, नारद ने कहा कहां ले जा रहे हो इंद्र, बोला ये हिरण्याकश्यप की पत्नी है, सांप का बेटा सतोला है, इसके गर्भ में इसके बच्चे को मारेंगे। बोला आपको क्या पता कि इसके अंदर असुर है, भगवान का मान भक्त भी हो सकता है, आप इसको मेरे आश्रम में छोड़ के जाओ। कयादु नारद के आश्रम में रह रही है, नारद रोज कथा करता है, कयादु के द्वारा कथा नारद सुन रहा और वह अंदर बैठा हुआ गर्भ में बच्चा सुन रहा है प्रहलाद। और नारद ने कहा जब तक आपका पति नहीं आएगा तब तक आपका गर्भ सुरक्षित होगा, आपको कोई कष्ट नहीं होगा और आपको कोई पीड़ा भी नहीं होगी। जब वापस हिरण्याकश्यप तपस्या करके आया तब कयादु वापस गई, उसके बाद प्रहलाद का जन्म हुआ। अब जब प्रहलाद का जन्म हुआ तो 5 साल के बच्चे प्रहलाद को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा, जो शुक्राचार्य के 2 बेटे संड और अमरक पढ़ाते थे गुरुकुल में। घर में नहीं बुलाया, बड़ा राजा था, घर में ट्यूशन के लिए बुला सकता था मास्टरों को, लेकिन घर में नहीं बुलाया, गुरुकुल में भेजा। क्यों? हिरण्याकश्यप बहुत बुद्धिमान था, बोला घर में मंगाऊंगा, जो पढ़ाने आएगा वो मेरे घर का वैभव देखेगा तो ईर्ष्या करेगा, मेरे बच्चे को शिक्षा देगा ही नहीं। कभी इसके ऊपर सोचा है? मास्टर को घर में ट्यूशन के लिए बुलाते तो बेचारा साइकिल या स्कूटर पे आता है ना, आप पैसे ज्यादा देते हो उसको तो आपके घर में 2-3 लंबी गाड़ियां खड़ी होती है, देखता है कि नहीं देखता है? आपके ड्राइंग रूम के अंदर एसी और सोफा देखता है, मास्टर बेचारा पसीने में साइकिल पे जब आता है तब कहता है पढ़ा लिखा मैं, पढ़ाने वाला मैं, सुख भोगता है ये संस्कार कभी नहीं होना चाहिए। शिक्षा उसको वो नहीं देगा जो गुरुकुल के अंदर सबको समान रूप से गुरु दिया करता था। इसलिए गुरुकुल की पद्धति के अंदर राम भी गुरुकुल में गया था, श्री कृष्ण भी गुरुकुल में गया था, तो ये गुरुकुल की पद्धति इसलिए हुआ करती थी कि समान भाव से सबको शिक्षा मिले। घर वाली शिक्षा में कभी आप बच्चा सुधर जाए उसकी संभावना बहुत कम है। मास्टर के घर भेजोगे तो फिर भी ठीक है, अपने घर मास्टर को बुलाया तो कभी बच्चा सुधरेगा ये संभावना नहीं। उसके हृदय के अंदर बहुत मनोविज्ञान बताएगा कि मेहनत हम करें, पढ़ाए हम, सुख ये भोगे और हम सुबह से पैदल मार के यहाँ आते हैं, मेरे को 50 रुपया देता है और वो बच्चा भी नहीं सुधरेगा, बोला ये तो हमारे घर में आके हम ही इसको जब पैसा देते तब ये पढ़ा रहा है तो उसका सम्मान नहीं करेगा। जब तक गुरु का सम्मान नहीं होगा तब विद्या कभी फलित नहीं होगी। इसलिए आजकल के किसी भी स्कूल यूनिवर्सिटी के टीचर का कोई भी स्टूडेंट सम्मान नहीं करता है। इसलिए आजकल की विद्या पढ़ा हुआ लड़का नॉलेज हो सकता है लेकिन समझ पैसे की भी नहीं। नो अंडरस्टैंडिंग ओनली नॉलेज, ऑल नॉनसेंस, सब बदमाशी और कुछ भी नहीं है। गुरु का जा सेवा नहीं है, गुरु के लिए सम्मान नहीं है, विद्या कभी फल नहीं देगी। पैसा कमा सकते हो, माँ बाप को सुख नहीं दे सकते हो, घर के अंदर बच्चे आपको भी सुख नहीं देंगे, जाके चारों सब घरों में देख लो। इसका एक ही कारण है कि गुरु का सम्मान नहीं किया। गुरु के हृदय से जब आशीर्वाद निकलती है, माँ के हृदय से जब आशीर्वाद निकलती है, पिता के हृदय से जब आशीर्वाद निकलती है, तब हर एक चीज अपना फल देती है, नहीं तो फल मिलेगा ही नहीं। जानकारी तो बहुत है, समझ बहुत कम है आजकल के लोगों के अंदर। समझ होती तो अपने बड़ों का सम्मान करना थोड़ी छोड़ देते। तो यहां प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा, प्रहलाद पढ़ने के लिए गया। एक दिन प्रहलाद घर में आया है, छुट्टी का दिन है, प्रहलाद को गोद में बिठा के पूछता है हिरण्याकश्यप, बेटा तुमने क्या सीखा? प्रहलाद कहता है मैंने सीखा शरवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का नाम लिया और लगा जैसे सांप का बच्चा नहीं है, सांप गोद में ऐसे नीचे उठा तो क्या बोला? हे संत, हे अमरक, तुम मेरे बच्चे को, हमारी गुरुकुल में कोई विष्णु का आदमी है, इस बच्चे को भड़का रहा है, हमारे शत्रु की शिक्षा दे रहा है, जाओ इसको ठीक तरह से शिक्षा दो। दोबारा शिक्षा देने के लिए भेजा, छंड और अमर को उनको एक कथा बताएं और वो अपने भगवान के भजन में लगे। दोबारा एक बार हिरण्याकश्यप गोद में उठा के बोलता है तो बेटा अब आपकी शिक्षा क्या कह रही है? बोला शिक्षा मुझे मेरी कह रही है कि संसार के अंदर दुख है, आपको ये राजपाट छोड़ के वन के अंदर चला जाना चाहिए, जाके भगवान का भजन करना चाहिए, विष्णु का हा? हमारे शत्रु का फिर भी पक्ष ले रहा है। प्रहलाद दो काम कर रहा था, एक तो अपने बाप को प्रचार कर रहा था कि भगवान का भक्त बनो, और दूसरे अपने सहपाठियों को प्रचार कर रहा था, दोनों को प्रचार कर रहा था। अब तो पिताजी को क्रोध आने लगा कि इसको तो मार दो, ये तो मेरे शत्रु का आदमी है, विष दे दो, पहाड़ से नीचे फेंको, हाथी के पांव के नीचे दबा दो। संड और अमर कहते हैं अभी महाराज आप इस बच्चे से डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पिताजी इसको शिक्षा सिखाएंगे तो ये सीख जाएगा। ले गए उधर। उधर प्रहलाद क्या करता है, सब बच्चों को कहता है हे दैत्य के बेटो, ये सब आपका जन्म जो है भगवान की भक्ति के बगैर व्यर्थ है, आओ बैठो भगवान के नाम का कीर्तन करें। वो कहते हैं हमारे गुरु ने तो हमको कभी सिखाया नहीं, तुम कहां से सीख के आए प्रहलाद? प्रहलाद कहता है मेरा गुरु नर नारायण के आश्रम में रहता है, नारद जी ने मेरे को ये शिक्षा दी है, मैं अपनी मां के गर्भ में ये शिक्षा प्राप्त करके आया हूं। आपको पहले भी हमने बताया था अर्जुन से सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना सीखा था, प्रहलाद ने अपनी मां के गर्भ में नारद से भगवान की भक्ति सीखी थी। शिक्षा ये मिलती है आप जब भी घर में गर्भवती कोई नारी हो तो भागवत का रामायण का कथा करो, सुंदर से चित्र घर में लगाओ तो आपके बच्चे के ऊपर से अच्छे संस्कार पड़ेंगे, इससे ये शिक्षा मिलनी है। और गर्भवती नारी बैठ के टीवी के ऊपर देखेगी भूत की फिगर पिक्चर तो पैदा भी होगा भूत, जो देखेगी वही तो शिक्षा अंदर में। इसलिए उस वक्त एक कथा कीर्तन सुनना चाहिए गर्भवती को और बेकार की बातों को खत्म करना चाहिए, तभी ही जीवन। ये कथा कथा करने के लिए नहीं है, ये शिक्षाएं हैं जो हमारे जीवन में कैसे उतारनी चाहिए उसकी आवश्यकता है। आज आज प्रहलाद को मारने का सब प्रयास असफल हो गया। बहन होलिका गोद में बिठा के जलाने के लिए गई, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। संडोर अमर्क ने कृत्या की उत्पत्ति की, कहा के जाओ प्रहलाद को मारो। प्रहलाद तो गोविंद के गुण गा रहा था, जो पैदा किया और जिसको मारना था उसको नहीं मारा तो वापस जाके संडोर अमर्क को मार दिया उसने, ये कृत्य का नियम है। अब प्रहलाद को पता लगा कि मेरे गुरु मेरे कारण मर गए हैं। प्रहलाद ने कहा हे भगवान, हे गोविंद, हे नारायण, जिसने मेरे को विष दिया, जिसने मेरे को हाथी के पांव के नीचे दबाया, जिसने मेरे को पहाड़ से फेंका, जिसने मेरे को डुबाने का प्रयास किया, जिसने मुझे जमा जलाने का अभ्यास किया, उन सब से मैंने द्वेष नहीं किया हो तो मेरे गुरु के बेटे जिंदा हो जाए। और दोनों जीवित हो गए। ये प्रहलाद की भगवता की पहचान है कि भगवान का कितना महान भक्त था। असल में ऐसा भी कुछ महात्माओं का मानना है, सनकादि कुमार प्रहलाद के रूप में आए हैं, आज अपने उसी हिरण्याकश को भगवान का प्रचार करके भगवान की भक्ति की तरफ लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और रावण और कुंभकर्ण के समय विभीषण के रूप में आके राम की, लेकिन शिशुपाल के उद्धार के लिए स्वयं कृष्ण आया तो फिर उनको आने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ऐसे भी कुछ महात्माओं का मानना है। तो आज कहीं से नहीं प्रहलाद मर रहा है, हिरण्याकश ने बुला के पूछा तुम्हारे को यह शक्ति कहां से मिलती, कहां है तुम्हारा भगवान? मुस्कुराता हुआ प्रहलाद कहता है जहां से आपको शक्ति मिलती है वहां से मेरे को मिलती है। मेरा भगवान कहां है? सब जगह है, हर हर जगह में भगवान है। तो तेरा भगवान इस खंभे में है? हाँ, इस खंभे में भी है, आपकी तलवार में भी है, मुझ में भी है, सबके भी, आप हम दोनों के बीच में भी है, और हमारे आचार्य जन कहते हैं प्रहलाद को खंभे के अंदर भगवान दिख रहा था, क्योंकि हर जगह भगवान को देखता था, सर्वत्र भगवान को देखने की उसकी दृष्टि थी, वो उस स्तर का था। और हिरण्याकश को भगवान नहीं दिख रहा था क्योंकि वो अंधा था। भगवान तो अभी भी यहां है लेकिन हमको नहीं दिख रहा है। जैसे मोतिया बिंद जिस आदमी को होता है, सामने की चीज उसको नहीं दिखती है तो चीज नहीं है, ये बात नहीं है, आंख खराब है, आंख ठीक कराने से वो चीज दिखती है। प्रहलाद की आंख के अंदर से काम क्रोध लोभ मोह का मोतिया पानी नारद ने निकाल दिया था ऑपरेशन करके, लेकिन हिरण्याकश तो लोभ का और काम का हिरण कहते सोने को, कश्यप कहते बहुत सुंदर गधेले को, तो केवल भोग और काम और क्रोध की मूर्ति थी। तो आज हिरण्याकश ने तलवार निकाली और खंभे को धड़ाम से मारा, खंभे से बड़ा आवाज निकला और नरसिंह देव भगवान का प्रकट हुआ। नरसिंह देव भगवान की। भगवान नरसिंह देव निकला, हिरण्यकश देखता है ये कैसा, ऐसा तो कभी मैंने देखा नहीं, ऊपर देखता हूँ शेर दिखता है, नीचे देखता हूँ आदमी दिखता है, ये विष्णु कोई फिर मायावी रूप धारण करके आया है। अब तो हाथ में उठा के तलवार हिरण्यकश की तरह लपका, जैसे पतंग आग में कूदना चाहता है ऐसे हिरण्यकश लपका। थोड़ी देर के लिए तो नरसिंह भगवान खिलवाड़ कर रहे थे, जैसे सांप हाथ में आए और निकल जाए, ऐसे छोड़ दें, निकल जाओ, आओ निकल जाओ, इंतजार कर रहे थे कि शाम का समय हो जाए, सूर्य अस्त हो जाए, संध्या काल हो जाए, न दिन हो न रात हो, न अंदर हो न बाहर हो, ब्रह्मा जी के वचन को भी सत्य कर लेते हैं। और जब टाइम पूरा हुआ और मास भी अधिक था, 12 महीनों से बाहर, देवता भी नहीं, असुर भी नहीं, कोई नहीं, उठा के रखा अपनी जांघ के ऊपर, और गिधे रखते नखून थे बहुत बड़े, नखून आयुध थे, ऐसे सारा पेट फाड़ के आंतों की माला पहन के क्रोध में नरसिंह देव बैठे ऐसे आसन के ऊपर। हिरण्यकश तो मर गया, ऊपर से भगवान शंकर आए, ब्रह्मा जी आए, इंद्र आए, वरुण आए, चंद्र आए, गंधर्व आए, किन्नर आए। भगवान शंकर कहते हैं आपने अच्छा किया, प्रलय मुझे करने चाहिए थे, लेकिन मुझसे पहले ये सब प्रलय कर रहा था, आपने इसको शांत किया, अच्छा किया। नरसिंह देव और क्रोध में उधर देखने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा आपने अच्छा किया, तब ने कहा ऐसे वरदान देके मुझको देखो आधा शेर आधा आदमी बना दिया है, ऐसा काम करना तो उचित है क्या? और क्रोध आ गया। इंद्र कहता है महाराज आपने हमारी भगवान बहुत बड़ी रक्षा की, हमको तो ये बुला के कहता था पानी का लोटा भर के आओ। अब ये विद्याधर कंदर सब ये प्रार्थना करने लगे, लेकिन उसका क्रोध बढ़ता जाए। लक्ष्मी को कहा जरा शांत तो करो पति देव को। लक्ष्मी देखा कि मूड खराब है, मैं नजदीक नहीं जाऊंगी। तब सब प्रहलाद ने सबको कहा कि बेटा ये आपके लिए प्रकट हुए। प्रहलाद ने जाके प्रणाम किया, नरसिंह देव एकदम शांत होकर गोद में उठा के प्रहलाद को चाटने लगे और कहा क्षमस्व माम, मुझे क्षमा करो, मुझे आने में देर हो गई, बेटा तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट सहा है। नरसिंह देव कहा बेटा तुमने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है, मेरे को आने में देर हो गई है, मुझे माफ करना। नरसिंह देव एकदम शांत हो गया, प्रहलाद प्रार्थना करने लगे नरसिंह देव की। नरसिंह देव ने कहा कुछ वर मांग लो। प्रहलाद ने कहा अब कुछ मुझे वर नहीं चाहिए, मुझे संसार के बंधन में मत डालो, मुझे वर की कोई आवश्यकता। नरसिंह देव ने कहा तुम्हें अभी राज करना पड़ेगा तेरे पिता का, तब बोलता है एक वरदान दे दो। अभी तो कोई नहीं मांग रहा था, अब क्यों मांग रहे हो? बोला वरदान ये चाहिए कि मेरे पिता का उद्धार कर दो, ये आपका द्वेषी था, आपका अपराधी था, इसका उद्धार करो। नरसिंह देव कहता तेरे पिता का तो उद्धार हुआ, तेरी 21 पीढ़ियों में किसी को मैं नहीं मारूंगा, इसलिए बलि प्रहलाद का पोता है, अपराधी हुआ, फिर भी भगवान ने उसका दरबान बनने का स्वीकार किया, और बलि के बेटे को बाणासुर सहसर बाहु हजार बाजू वाला शंकर का भक्त है, कृष्ण मारने के हजार बाजू में से 999 काटी शंकर ने कहा मेरा भक्त है इसको मारो मत। तब श्री कृष्ण कहते हैं ये प्रहलाद के कुल का है, मैं कभी भी इसको मारूंगा नहीं, बस इसके अहंकार कम करना था। आज प्रहलाद के उस आसन के ऊपर नरसिंहदेव पहले बैठे, जिसके ऊपर सिंहासन, जिसके ऊपर हिरण्यकश बैठता था, उसको पवित्र करके प्रहलाद को राज तिलक दिया, और प्रहलाद यहाँ नरसिंहदेव की कृपा से राज करने लगा दैत्यों के ऊपर। बाकी 5 अध्यायों में युधिष्ठिर नारद से वर्ण आश्रम के बारे में पूछता है, सन्यासी का धर्म क्या है, वानप्रस्थ का क्या है, ब्रह्मचारी का क्या है, ये तो कोई रहा नहीं, अभी आजकल गृहस्थ का धर्म क्या है, इसके ऊपर हम थोड़ी चर्चा करके आज की वाणी को विराम देंगे। गृहस्थ के धर्म में बोला नारद ने, युधिष्ठिर ने कहा कि हम राजा हैं तो क्या हुआ, लेकिन संसार में फंसे हुए हैं, बड़े मूर्ख हैं, आप कृपा करके हमारे उद्धार का रास्ता बताओ। कहता है नारद हे युधिष्ठिर महाराज, गृहस्थी को वासुदेव भगवान के अवतार की कथाओं को श्रवण करना चाहिए, जैसे आप बैठ के भागवत सुनने हो, ये गृहस्थियों का पहला धर्म नारद ने बताया। पहला गृहस्थी का धर्म है भगवान श्री कृष्ण की अवतार की कथाओं को श्रवण करना। फायदा क्या होगा? भगवान से प्रेम होगा, जब भगवान से प्रेम होगा तो संसार से आस्ते आस्ते वैराग होने लगा। एक दिन छोड़ना ही है, छोड़ने से पहले छोड़ने की दिल करेगी, अभी तो मरते समय भी दिल छोड़ने की नहीं करती है। दूसरा कहा कृष्ण को समय समय के ऊपर तीर्थ यात्रा करने जाना चाहिए। हरिद्वार जाएं, वृंदावन जाएं, काशी जाएं, द्वारका जाएं, लेकिन समय समय के ऊपर तीर्थ यात्रा ग्रस्त को निश्चित रूप से करने जाना चाहिए। जब वहां जाएंगे तो वहां की बातें, अब वृंदावन जाएंगे तो कृष्ण कथा ही सुनने को मिलेगी, और वृंदावन की जान जाते तो सब लोग हैं, जब छुट्टी होती है तो कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं। अगर जाओगे मलेशिया तो वहां से केवल भोग की बातें सुन के आओगे, जाओगे स्विट्जरलैंड तो वापस आके यहाँ परेशान हो जाओगे, जाओगे वृंदावन तो वापस आके राम राम जपोगे, अपना जीवन सफल करोगे। तो कहता है नारद के तीर्थ यात्राएं निश्चित रूप से करनी चाहिए। फिर कहते हैं गृहस्थियों को अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए, समय समय के ऊपर धार्मिक कामों के अंदर उदारता के साथ दान करना चाहिए। केवल गृहस्थी तो है, जो केवल एक है ब्रह्मचारी को दान वो देता है, सन्यासी को दान वो देता है, वानप्रस्थ की भी वही पान करता है, ब्राह्मण को भी वही चलाता है, क्षत्रिय को टैक्स देता है, ब्राह्मण को दान देता है और मजदूर को तनख्वाह देता है। अभी भी आप लोग सब सरकार को टैक्स दे रहे हो, नहीं टैक्स के नहीं तो घूस दे रहे हो, कुछ न कुछ दे ही रहे हो, नौकर को तनख्वाह दे रहे हो, लेकिन ब्राह्मण को देना बंद कर दिया। इसलिए भगवान ने कहा ब्राह्मण को मत दो, ब्राह्मण को जरूरत नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर को या वकील को दे के आओ, तेरे घर में बचने वाला नहीं है। ब्राह्मण का ही केवल हक मारना शुरू किया है आजकल के लोगों ने, ये आप ठीक तरह से देख लेना, ये सत्य है। ब्राह्मण के रक्षा न करने से हमारी संस्कृति के ऊपर बड़ा आघात हुआ है। किसी ने हमसे एक बार कहा महाराज आपका शरीर तो बहुत तगड़ा लगता है, लड्डू माल मसाले वो भी मुफ्त के खाते हो, कमाते तो हो नहीं। मैंने अच्छा लगा, मैंने बोला कम से कम किसी को पता तो लगा कि हम इतना अच्छा कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं। हमने कहा मेरे भाई सबसे ज्यादा बजट हमारे देश की किसके ऊपर है, सबसे ज्यादा बजट किसके ऊपर है हमारे देश की? हाँ जी बोलिए, कोई बुद्धिशाली से बताओ। डिफेंस, सुरक्षा के ऊपर, सेना के ऊपर हमारी बजट है। 1971 के बाद कोई लड़ाई नहीं हुई है, जो 1971 में भर्ती हुआ था वो 90 में रिटायर हो गया, कितना पैसा गवर्नमेंट ने उसके ऊपर खर्चा किया, अभी तक पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इतना सारा उसके ऊपर खर्चा क्यों किया, उसने एक दिन भी बंदूक नहीं चलाई। तब उत्तर ये आएगा कि जब सीमा के ऊपर आक्रमण होगा तो सीने के ऊपर गोली होगा, वो खाएगा, आप घर में सोए रहोगे, इसलिए उसके ऊपर हम खर्चा करते हैं। बात सच्ची है, हम खर्चा उसके ऊपर इसलिए करते हैं कि जब आवश्यकता पड़ती है सीमा की सुरक्षा की, तब सीने के ऊपर गोली वो खाते हैं, हम आराम से घर में सोते हैं। ठीक ऐसे ही तुम्हारी संस्कृति के ऊपर जब आक्रमण होता है तब ये ब्राह्मण उसकी रक्षा करते हैं। उस वक्त जब ये नहीं रक्षा करेंगे तो तेरा सब कुछ सत्यानाश हो जाए, और ये एक अधर्म बहुत बढ़ रहा है चारों ओर से। गलती हमारे ब्राह्मणों की भी है कि वो भी सद्धर्म के ऊपर नहीं पा चल रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनका पालन करने वालों ने उनसे हाथ निकाल दिया। तो ये शिक्षा नारद दे रहा है युधिष्ठिर महाराज को, और युधिष्ठिर महाराज के पास अतिथियों का केवल सत्कार करने के लिए 10,000 रसोइये थे, इतने लोगों के भोजन का प्रबंध था, कोई होटल नहीं थी हस्तिनापुर के अंदर, अतिथिशाला थी, भोजन फ्री का 10,000 रसोइये बनाते थे, कोई होटल नहीं थी रहने के लिए, धर्मशालाएं थी। ये होटल पाश्चात्य संस्कृति का है, हमारी संस्कृति का नहीं है। जिस संस्कृति में अतिथि देवो कहा जाता है, वहां किराए के ऊपर रह के और भोजन बेचा जाए, ये हमारी संस्कृति की पहचान नहीं है, ये हमारी संस्कृति की पहचान नहीं। हर गृहस्थी बाहर खड़े होकर कहता था कोई भूखा है तो आओ खाओ, तो आदमी भूखा कैसे जा सकता है? ये भागवत की शिक्षा जब से हमने भुला दी है, तब से हमारी संस्कृति हमारे सदाचार के ऊपर बड़ा आघात हुआ है। यहाँ सातवां स्कंध समाप्त होता है, केवल एक चीज रहती है, भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी कैसे हुआ? असुरों ने 3 पुरियां बनाई, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की, तो नहीं थी लोहे के, तो आजकल के होते हैं, और उन पुरियों के ऊपर से आक्रमण करें, देवता बड़े दुखी हो गए। अब आकाश से हवाई हमले से तो सब डरते हैं, देवताओं की 3 पुरियां वो भी सोने चांदी की बनी हुई, सबने शंकर को कहा हमारी रक्षा कीजिए। शंकर ने बड़ा प्रयास किया, सब अपने अस्त्र शस्त्र चलाए, लेकिन जो मरे आसुर, एक अमृत कुंड है सबको उसमें डाला जाए, सब जीवित हो जाए वापस, भगवान विष्णु गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाया, अमृत कुंड से सारा अमृत पी गए। उसके बाद भगवान शंकर के हाथ में धनुष बांध दिया, कवच दिया और बाण के ऊपर विष्णु स्वयं बैठ गए। तो अब आक्रमण करो, दोपहर के समय शंकर जी ने एक पूरी सोने की पूरी, चांदी की पूरी और रूपे की पूरी के ऊपर आक्रमण किया, तीनों पूरी ध्वंस हुई। शंकर जी का नाम त्रिपुरारी हुआ और यहाँ सप्तम स्तंभ समाप्त होता है। कल 8-9 और भगवान श्री कृष्ण का प्रकट्य करेंगे। आज की कथा को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। आप थक नहीं गए हैं? अरे कृष्ण, ये पंडित जी आते हैं ना, सब समझते हैं हमको अभी समाप्त करना। अरे चलो भाई, आरती की आप तैयारी करो, आप कीर्तन की तैयारी करो। चलो,
हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। मैं आपको जरा कल के कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूंगा। कल जो हमारा कार्यक्रम है वो 4 से 5 बजे तक भगवदगीता भागवतम का पाठ होगा और कल रात को 9 वर्ष के आगमन के लिए 10 बजे से आधी रात तक जब तक आप यहाँ बैठेंगे हरे कृष्ण तक कीर्तन चलता रहेगा, जिसमें कि वृंदावन से भी काफी भक्त लोग आ रहे हैं और दूसरा हमारे पूजन प्रभु जी जो फ्रीडमॉल में इस्कॉन मंदिर में बहुत अच्छे भजन करते हैं वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो कृपा करके बहुत अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर बना रहे
और एक बार कल एकादशी है
और एक बात और बताना चाहूंगा, सफला एकादशी भी है तो आपसे एक बार ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 2010 जब जाएगा और 2011 आएगा, आप एक साल का इकट्ठा